नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय युवा स्टार्टअप के माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्टार्टअप मिशन ने 10 वर्ष में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बदल दिया। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शानदार जीत हासिल की। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला कार विस्फोट मामले में 5 आरोपियों को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सरकार ने सट्टेबाजी की 242 अवैध वेबसाइटों पर रोक लगाई। भारत ईरान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। और WPL क्रिकेट में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई में मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक योजना नहीं बल्कि इंद्रधनुषी दृष्टि है जो विभिन्न क्षेत्रों को नए अवसरों से जोड़ती है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया मिशन केवल एक दशक में क्रांति बन गया है।
हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय युवा स्टार्टअप के माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को वित्त पोषण देने के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
आज 45% से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। विमेन लेड स्टार्टअप फंडिंग के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। स्टार्टअप्स का ये इंक्लूसिव मोमेंटम भारत के सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लक्षित नीति और वित्तीय सहायता के चलते भारत का डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के 80% स्टार्टअप एआई आधारित हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन मुंबई पुणे पिंपरी चिंचवाड़ कल्याण डोंबिवली नाशिक ठाणे और नवी मुंबई सहित 29 नगर निगमों में से अधिकांश में बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा कि महायुति गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासन और बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दे पर नगर निगम चुनाव लड़ा था। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जनादेश के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। राज्य चुनाव आयोग ने 11 नगर निगमों के नतीजे घोषित कर दिए हैं। महायुति गठबंधन को नवी मुंबई उल्हासनगर पनवेल मालेगांव धुले जलगांव अहिल्यानगर कोल्हापुर और जालना में बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत पर जनता के प्रति खुशी और आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये परिणाम दर्शाते हैं कि एनडीए का महाराष्ट्र की जनता के साथ संबंध और भी मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विकास नीतियों में जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद देते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी मजबूत और प्रासंगिक बनी रह सकती हैं जब वे पारदर्शी, समावेशी, उत्तरदायी और जनता के प्रति जवाबदेह। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन भाषण में श्री बिड़ला ने सभी प्रतिनिधि मंडलों की सक्रिय भागीदारी, उत्साह और रचनात्मक भावना की गहरी सराहना की। इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में हुआ। समापन सत्र में उन्होंने 29वें CSPOC की अध्यक्षता ब्रिटेन के संसद के अध्यक्ष सर लिंडसे हुएल को सौंपी। सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 1966 में संशोधन करने के लिए कानून लाएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य खराब क्वालिटी, नकली और बिना लाइसेंस वाले बीजों की बिक्री पर रोक लगाना है।
जो सीड एक्ट था पुराना, वो 1966 का था लगभग, वो बहुत प्रभावी नहीं था। इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है, कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को, और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी निरंतर प्रगति कर रही है। नई दिल्ली में आज जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी के साथ 18वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता करने के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान में विश्व व्यवस्था को आकार देने तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने की अपार क्षमता है।
इकोनॉमिक सिक्योरिटी टुडे इज,
आज की अनिश्चित वैश्विक स्थिति में आर्थिक सुरक्षा आवश्यक है। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करने को अत्यधिक महत्व देते हैं। हम सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, स्वास्थ्य और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
हेल्थ एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी।
वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा पहल के अंतर्गत भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र संवाद आयोजित करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग को गति देने के लिए दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में AI संवाद शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ईरान की मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत ईरान में रह रहे भारतीयों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
ईरान में करीबन हमारे 9000 नागरिक इस समय रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी हैं। हाल ही के दिनों में वहां जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में वो ईरान अभी ना जाएं, और हाँ, जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है अभी उसका भी रास्ता अभी है।
चाबहार बंदरगाह के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत प्रतिबंधों से छूट के संबंध में अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत कर रहा है।
28 अक्टूबर 2025 को US के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर के बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए US पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला कार विस्फोट मामले में 3 डॉक्टर और 1 उपदेशक सहित 5 आरोपियों को अगले महीने की 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन्हें 10 नवंबर के विस्फोट से पहले कथित तौर पर आतंकवादी हमलों में सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे। 2 अन्य आरोपी यासिर अहमद डार और नसीर बिलाल मल्ला की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कई राज्यों में 26 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली शामिल हैं। निदेशालय ने कहा कि तलाश अभियानों में एक सुसंगठित अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल जैसे कई राज्यों में व्यवसायिक आधार पर मादक पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। सरकार ने 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिंक ब्लॉक कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन जुआ अधिनियम पारित होने के बाद से अब तक 7,800 से अधिक अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद किया जा चुका है और प्रवर्तन कार्यवाहियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये कार्यवाही उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से युवाओं की सुरक्षा और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से होने वाले वित्तीय सामाजिक नुकसान को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पश्चिम बंगाल और असम के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या मार्ग पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में श्री मोदी असम के गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बारुंगड़ा 2026 में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य में एक दर्जन से अधिक नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रभाला तीर्थम, जिसे जगन्नाथाथोटा प्रभाला उत्सव के नाम से जाना जाता है, आज कनुमा में शुभ अवसर पर कोनसीमा क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव आंध्र प्रदेश के मोसलापल्ली गांव में स्थित जगन्नाथोटा नामक नारियल के बागान में आयोजित किया गया था।
कनुमा दिवस पर 11 प्रभाओं ने आसपास के 11 गांवों से भव्य जुलूस निकाला। ये प्रभाएं भगवान शिव के 11 रूपों एकादश रुद्रों का प्रतीक थीं। इस उत्सव का एक प्रमुख आकर्षण गंगा लकरू अग्रहारम से निकली प्रभा का पवित्र कौशिका नदी को पार करना था। इस उत्सव का इतिहास 476 वर्षों से अधिक पुराना है। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में एकादश रुद्र विश्व कल्याण के लिए यहां एकत्रित हुए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रभाला तीर्थम को राज्य उत्सव घोषित किया था। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने बताया कि सरकार संशोधित आधार वर्ष 2024 के साथ 12 फरवरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करेगा।
CPI का डेटा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं CPI, ये हम प्रति मास 12 तारीख को निकालते हैं। IIP जो है वो भी मासिक हिसाब से निकलता है, वो हर मास के 28 तारीख को निकलता है। जो GDP का डेटा है वो त्रैमासिक 3 मास में क्वार्टरली डेटा निकलता है और एनुअल डेटा हम निकालते हैं। अभी हम फरवरी मास में 12 तारीख को निकालेंगे CPI का डेटा और 28 तारीख को निकालेंगे GDP का डेटा।
ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे कार्यक्रम करंट अफेयर्स में आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट्स के साथ मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। गुजरात जॉइंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। आज पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन चीनी ताइपे के लिन चुई से 21-17, 13, 21-18, 21 से हार गए। लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती के रूप में एकमात्र बचे खिलाड़ी थे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 18 तारीख तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मंगलवार तक कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय युवा स्टार्टअप के माध्यम से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कहा, स्टार्टअप मिशन ने 10 वर्ष में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बदल दिया। भाजपा शिवसेना गठबंधन ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शानदार जीत हासिल की। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला कार विस्फोट मामले में 5 आरोपियों को 13 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सरकार ने सट्टेबाजी की 242 अवैध वेबसाइटों पर रोक लगाई। भारत ईरान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।